ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सब विशेष परम शक्ति के स्रोत से संबंध इस विषय पर आदरणीय क्रेना दीदी जी से अनुभव युक्त वाणी सुनेंगे। जैसे कि आप सबसे कल भी बात हुई, अब आप हमारे अतिथि नहीं, परंतु आप सब हमारे अपने परिवार के हैं। तो जब ये पूरा परिवार ही बैठा है, परिवार क्यों, हम एक ही परम पिता की संतान, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई। और जो आज का विषय है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर विषय है। वैसे तो हम सर्व का परमात्मा से अटूट संबंध है ही, लेकिन आज आप इस बात को बहुत ही गहराई से अनुभव करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि सदा के लिए आपके साथ ही अनुभव रहेगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो परम हस्ती है, वो पिछले 50 वर्षों से परमात्मा की छत्र छाया में सर्व को यह अनुभूति करवा रहे हैं और पिछले 40 वर्षों से समर्पित हैं। इन्होंने, आपने विभिन्न कोर्सेस करवाए हैं, इनकी स्पेशलिस्टी तो मेडिटेशन कोर्स में है, पर इसके अलावा वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के आपने बहुत सारी रिट्रीट्स भी कराई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप जुड़े हुए हैं। विशेष आप बिजनेस और इंडस्ट्री विंग के एक्टिव मेंबर हैं और उसके अंतर्गत आपने विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस, रिट्रीट और साथ साथ 1990 से तो आप सर्व को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आपके ट्रेनिंग के मुख्य विषय सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस फ्री लिविंग, फीलिंग ग्रेट और राजयोग मेडिटेशन। इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर आप ट्रेनिंग करवाते हैं। हमने प्रैक्टिकल इनका अनुभव किया है 3 दिन के मेडिटेशन सत्र में। जब ये कराते हैं तो इनकी ओजस्वी वाणी से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप भी आज हिलेंगे भी नहीं, इतना विशेष आप अनुभव करेंगे। क्योंकि देश विदेश में भी इन्होंने अपनी सेवाओं से लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। और जिस विंग में हम जुड़े हैं, रूरल विंग, माउंट आबू के एग्रीकल्चर फील्ड के बहुत सारे रिसर्चर्स के साथ भी आपने पार्टिसिपेट किया है। तो आज हम सर्व आत्माएं परमात्मा के साथ अटूट संबंध का अनुभव कर सके, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय क्रेना दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। पहला ओम शांति है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब सेकेंड टाइम, ओम शांति। माना मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूं। तीसरा ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा शांति सागर की संतान हूं। कभी भी हमें पौना घंटा, एक घंटा कोई भी बातों को सुनना हो, तो उसके पहले मन को इस प्रकार से शांत कर देना बहुत जरूरी है। शांति धाम से कनेक्टेड, शांति सागर से कनेक्टेड, शांत स्वरूप बन करके जब हम सुनते हैं तो वो अंदर सहज रीति से बुद्धि में बैठ जाता है। और जो कन्फ्यूजन्स हो या और बातें, उस समय बीच में नहीं आती है। तो ये बहुत मदद करता है। आज का विषय भी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जिनसे आए हैं, पूरा झाड़ भी तो बीज से आता है, ऐसे हम परमपिता परमात्मा शिव से अर्थात शांति धाम से आए हैं, और अब समय है कि हम अपने सारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हुए समेटते जाए, क्योंकि वापस शिव बाबा के साथ हमें लौटना भी है। सबकी रिटर्न टिकट है? रिटर्न टिकट सबकी जरूरी है ना, कोई सिंगल टिकट से ये धरती पर नहीं आता है, लेकिन खुशी होनी चाहिए वापस जाने की। ऐसा किसको होगा, क्योंकि वापस जाने के लिए तो मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा ना, और आज सबसे बड़ा डर किसका है, मृत्यु का। और पूरा गीता का ज्ञान कहो, जो भी कहो, सब इस पे बेस्ड है, मृत्यु पर विजय है ना। मृत्यु पर विजय माना, ऐसा थोड़ी हम मरेंगे ही नहीं, मृत्यु पर विजय माना मृत्यु का भय, मृत्यु की पीड़ा, मृत्यु का भयानक स्वरूप, ये सब हमें अनुभव नहीं होगा। हमको ऐसे लगेगा जैसे रोज हम कपड़े कैसे बदलते हैं, ऐसी फीलिंग आएगी। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है राजयोग। जिन्होंने कल और परसों और कल, यस्टरडे, डे बिफोर, जिन्होंने भी दोनों लेसन अटेंड किए हैं, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, शुक्रिया। क्योंकि वो दोनों विषयों को एक बार सुना है आपने, लेकिन अब उनको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करके उसे खुद से मनन चिंतन करना पड़ेगा। उसके बिना राजयोग मेडिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? मन को आदत है 100 तरफ भटकने की। आपको लगेगा आप बराबर मेडिटेशन में बैठे हैं, 2 मिनट के लिए बैठे, लेकिन उस 2 मिनट में भी मन तो कहां कहां चला जाएगा। इसलिए नॉलेज बेस है राजयोग का। ज्ञान अगर नहीं समझ में आता है तो फिर योग नहीं लगता है। इसलिए नहीं हम जो ये विंग की बातें कर रहे, योगिक खेती की बातें कर रहे, अगर आपको खेती का ज्ञान ही नहीं है तो आप कितना भी मेडिटेशन करो क्या होगा। खेती का ज्ञान भी तो होना जरूरी है ना, और उसके हम रात को देख रहे थे कितने कितने एस्पेक्ट्स है, कोई एक बात नहीं है, और उस सबका ज्ञान, और फिर उसके साथ मेडिटेशन को जोड़ेंगे तो मेडिटेशन का भी ज्ञान। देखो हम तो धरती पर आए ही है सीखने के लिए, वी आर एवर स्टूडेंट्स। आप कोई भी नई बात भी सुनने जाएंगे ना तो आपको समझना तो पड़ेगा ही, उसका ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अंधश्रद्धा में चले जाएंगे। हाँ बैठ जाओ हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, तो हर बात को समझने के लिए, इसलिए 5 प्रकृति के 5 तत्व ये सारा संसार में बहुत कुछ सिखाना चाहता है, हर चीज हमें सिखाना चाहती है। तो ये चीज हम अगर याद रखते हैं तो रोज अपना उमंग उत्साह बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि इसमें शब्द है योग और राज। भले गीता में मेंशन्ड है, लेकिन राजयोग का वास्तविक अर्थ क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम होता है। तो योग माना याद, योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़। तो सबसे पहला स्टेप योग का क्या है कि अगर मैं कहीं भी जुड़ी हुई नहीं हूं, कहीं भी कनेक्टेड नहीं हूं, तो फिर वो योग नहीं है। जैसे समझो आप कोई व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है, जैसे इस बार के इसमें आप किसी के साथ पहली बार मिले तो आप कनेक्ट हुए, हाथ मिलाया, है ना, तो वो कनेक्शन तो जरूरी है ना। हाँ, तब तक आप थोड़ी सबको याद करते होंगे, कितने लोग बैठे हैं, सब आकर बैठते हैं, सब चले जाते हैं, कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब एक बार मिले आपस में तो कनेक्टेड हो जाता है, पर उतना भी काफी नहीं है। आप दूसरे तीसरे दिन वापस उसको ढूंढेंगे, भाई वो आया है कि नहीं, याद आएगी, लेकिन किस समय, सभा में, और कोई समय में नहीं, सभा में याद आएगा कि वो आया है क्या, देखो तो। और फिर उनके साथ जाकर बैठने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे तो क्या होगा, आपस में बैठेंगे तो क्या होगा, बातचीत होगी, है ना। तो बातचीत होने से कैसा लगेगा, हाँ अभी मैं थोड़ा बहुत इस व्यक्ति को जानता हूं, तो एक प्रकार का संबंध बंधने जाता है, समझा। तो योग माना जोड़ तो है लेकिन साथ में संबंध भी है। और फिर जितनी आप आपस में वार्तालाप करते जाएंगे उतना क्या होगा, अच्छे मित्र बन जाएंगे, अच्छी काम की बातें भी होंगी और कुछ तो आपस में प्राप्ति होगी, लेन देन होगी। अगर उससे नहीं हो रही है तो आप दूसरे दिन उसको मिलेंगे ही नहीं, है ना। और राज माना ऐसा योग, ऐसा कनेक्शन जिससे हम अपनी इंद्रियों पर, ये आंख, कान, नाक, मुंह, सब ये जो है इंद्रिया है स्पर्श, इसके वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाए। कितने अमूल्य है ना, अगर कोई मुझे कहे मैं 50 लाख रुपया देता हूं तुम्हारा एक कान मुझे दे दो, नहीं देंगे ना, तो इसका मूल्य कितना हुआ एक कान का, 50 लाख। तो अगर पूरे अंगों का होगा तो कितना होगा, है कि नहीं, कितनी अमूल्य प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी है, वो भी गिफ्टेड माँ बाप ने दी है ना, तो उसके लिए कुछ कमाया नहीं, माँ बाप ने वो बॉडी अपने को दी, तो कितना अमूल्य प्रॉपर्टी अपने पास है, तो हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति वो होता है ना कि उसको जिसमें यूज करता जाए और उसमें से उसको प्राप्ति होती जाए, वो कमाता जाए, वो और आगे बढ़े जीवन में, है ना। तो केवल पैसे या कोई कामकाज की बात नहीं है, लेकिन ये इंद्रियां सतत काम कर रही है, सतत। तो ये इंद्रियों से हमारी क्या कमाई हो रही है, मैं क्या देख रही हूं, मैं क्या सुन रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या सोच रही हूं, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार। तो आपने देखा कि आप एक आत्मा हो, चैतन्य ज्योति हो। कंपैरिजन में बॉडी को जड़ बोला जाता है, लेकिन बॉडी जड़ नहीं है, उसकी अपनी भी ऊर्जा है, कोई चीज जड़ है ही नहीं, इसकी कंपैरिजन में कहा जाता है। तो ये शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा, चैतन्य के साथ साथ अजर अमर अविनाशी, जो देह से अलग है कि नहीं, शरीर अजर अमर अविनाशी है नहीं, तो उसके कंपैरिजन में आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। और ये शरीर छोटे से बड़ा 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 होके कितना बड़ा हो जाता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वो हमेशा अदृश्य है, अदृश्य शक्ति। माना जितनी शक्ति सूक्ष्म होती है ना, उतनी शक्तिशाली होती है। जैसे प्रकृति में अणु है, अणु कहां दिखाई देता है, जब तक आप कोई वैज्ञानिक यंत्र यूज ना करो अणु दिखाई नहीं देगा, पर कितना पावरफुल, आप चाहो तो धरती को स्वर्ग बना दो उसे, या तो आप उसको खत्म करो बॉम्ब्स बना के, इतना अणु में पावर है, तो अगर अणु में पावर है तो आत्मा में कितना होगा। और हम सब वो चैतन्य शक्ति आत्मा है, और हम कौन है, हम या तो गुलाम है अपनी इंद्रियों के या तो राजा है, दो ही चीज हो सकती है, या तो गुलाम या तो राजा। अगर राजा है तो पूरी प्रजा एकदम सुखी संपन्न खुश, अगर गुलाम है तो सब तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ शरीर में। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान रखता हूं, मैं तो रोज ये करता हूं वो करता हूं वो करता हूं, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, क्योंकि अगर आपने अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी वृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन आएगा कि ये शरीर भी धोखा देगा। इसीलिए इनफ नहीं है कि शरीर को हम एक्सरसाइज से खाली हेल्दी रखें, आत्मा का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए अगर इस सब्जेक्ट को ही इग्नोर किया तो आप योगी हो, लेकिन देह और देहधारी और देह के पदार्थों के साथ आपका योग है, वो राजयोग नहीं है। योगी हो, राजयोग है जो स्वयं को आत्मा निश्चय करे और फिर इस शरीर को चलाए और वापस अपने को आत्मा निश्चय करे, अपने अस्तित्व में स्थित रहे, भूले नहीं। वो फर्स्ट स्टेप है राजयोग का। भले आप सीधा परमात्मा से मिलन नहीं करो, जरूरत नहीं है बिगिनिंग में, बिगिनिंग में जरूरत है कि अपने को आत्मा समझो, निश्चय करो, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है, वो इतनी जल्दी से महसूस नहीं होगी। इतना टाइट कपड़ा है, ये बहुत टाइट है, उसी का एहसास होता रहता है। सोते हैं तो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि ये टाइटनेस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अगर नींद ही नहीं आए तो और वर्स। इसीलिए इस टाइट जो हमने संस्कार बना दिए हैं शरीर के द्वारा, शरीर के स्मृतियों द्वारा, उसको थोड़ा सा लूज करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है। कोई रथ चला रहा है और वो मारता जाए लगाम खींचता जाए मारता जाए, आपको अच्छा लगेगा? या आप देख रहे कि एक रथी है वो चला रहा है और आपको लगेगा जैसे सारे घोड़े उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसको लगाम निमित्त मात्र पकड़ना पड़ता है, बाकी वो जैसे है वैसे एकदम मस्त चल रहा है रथ, तो कौन सा आपको बेहतर लगेगा? दूसरा वाला ना। बस ऐसे ही हमको अपना जीवन चलाना है। आपको लगेगा कि शायद इसमें मुझे बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, शायद मुझे बहुत गिवअप करना पड़ेगा, मुझे बहुत खोना पड़ेगा। खोना नहीं, बहुत कुछ पाना है। सोच बदलो, बहुत कुछ पाना है। जब आत्मा भरपूर है, आत्मा संपन्न है, तो दुनिया में कोई प्रकार की कमी कभी हो ही नहीं सकती। बीज शक्तिशाली है तो क्या झाड़ संपन्न नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पर अभी हम अंदर से आत्मा की स्मृति से खोखले हैं, इसलिए यहां पर वो खोखलापन भरने के लिए सबसे पहले कहा जाता है, अगर राजयोग का अभ्यास करना है तो स्वयं को आत्मा निश्चय करना होगा, जो कहां रहती है, ये दो आंखों के पीछे, जहां मस्तिष्क है ब्रेन, उसके आगे स्पेस है, दो आंखों के पीछे मस्तिष्क की शुरुआत में आगे मैं आत्मा अपने सिंहासन पर स्थित हूं। क्या चलते फिरते भी हम ये अभ्यास नहीं कर सकते? केवल स्मृति लानी है कि मैं कहां हूं अभी, तो हम कहते माउंट आबू में हूं। ऐसी स्मृति करो, मैं कहां हूं? अपनी दो आंखों के पीछे। इतना सिंपल, ABCD जैसा। तो क्या हम स्मृति नहीं कर सकते हैं? जो मेरा वास्तविक पहचान है, मुझे उसी की ओर वापस जाना होगा। आत्मा का कनेक्शन संन्यास के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। डोंट कनेक्ट इट विद संन्यास। हम सब आत्मा धरती पर इस शरीर को लेकर के कार्य कर रही है, तो इसमें संन्यास की कहां बात आई? आत्मा ही करता धरता है इस शरीर द्वारा, उसको हम कैसे नेगेट कर सकते? कितना स्वाभाविक है। मैं कौन? और जब भी मैं बोलती हूं हां मैं क्रीना बेन, तो मुझे याद आता है कि ये नाम मेरी बुआ ने या मेरी मां ने रखा है मुझ पे, और किस पे? इस पहचान के लिए। फिर याद आता है, पर मैं वास्तव में कौन हूं? चमकती हुई ज्योति या चमकता हुआ प्रकाश, ऊर्जा। उस पे कोई क्रीना नाम नहीं रख सकता है, वो अपने आप में है, उसका अस्तित्व अपने आप है। तो मैं वो हूं, अजर अमर अविनाशी। अभी गीता का इतना बड़ा पाठ कितने सेकंड में आपको समझ में आ गया? लंबा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या 7 दिन की जरूरत पड़ी? मैं कौन? तुरंत आना चाहिए। इस शरीर में बैठा आत्मा, चैतन्य, अजर अमर अविनाशी, अदृश्य सूक्ष्म शक्ति। तो ये है पहली चीज, कनेक्शन अपने आप के साथ। मना क्या हुआ? बाहर से किधर गए? अंदर की ओर। पर उसके लिए आपको ऐसे ऐसे खींचने का नहीं है। फिजिकली आप स्ट्रेस मत करो, नहीं तो बोलेंगे मैं ऐसा करता हूं ना तो मेरे को हेडेक होता है। अरे हेडेक तो होगा ना, आप इतना खींचते हैं महसूस करने के लिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जो नेचुरल चीज है उसके लिए आपको स्ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी स्मृतियों से ही आपको अनुभव होगा मैं आत्मा हूं, और हम सब आत्मा है। तो क्या हम सब एक है कि यूनिक आत्माएं हैं? एक 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 है, स्वरूप में एक है, पर यूनिकनेस तो रहेगी भाई। मुझ आत्मा जैसा कोई दूसरी आत्मा नहीं, आप जैसी कोई दूसरी आत्मा नहीं। हर एक की यूनिकनेस है, जैसे हर बीज की यूनिकनेस होती है। तो क्या हम हरेक को उस दृष्टि से देख सकते हैं? ये भी यूनिक आत्मा है। रास्ते पर एक भिखारी बैठा है, ये भी यूनिक आत्मा अपना रोल बजा रहा है, देख सकते हैं ऐसा? तो तुरंत अपने अंदर के विचारों में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझ आत्मा का इस शरीर के साथ, ठीक है? तो उसके बाद सेकेंड हो क्या आएगा? आपको थोड़ा टाइम निकाल के अपने से बातें करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे कनेक्शन स्मृति आगे बढ़ेगी? आपको रोज अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और कहीं भी बैठो, अच्छी जगह बैठो, हो सके तो रोज एक ही जगह चुनो, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि अपने से आत्मिक बातचीत करने से वाइब्रेशन में कितना फर्क आ गया है। जो आपने देखा नहीं उसमें पिक्चर में दिखाते, योगी बैठा है खेत में और एकदम वो गोल 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 वाइब्रेशन आ रहा है, वो कहां से निकल रहा है बताओ? आत्मा से वो वाइब्रेशन। तो आप अपने से बात करेंगे, अपने से आत्मिक बातचीत करेंगे, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आया हूं, तो आपके वो वाइब्रेशन फैलेंगे। यू आर क्रिएटिंग द फील्ड, आप हल चला रहे हो अपनी लाइफ का उस बातचीत से। और उसके बाद आता है संबंध, संबंध को समझो क्योंकि दोनों को साथ में काम करना है भाई। आत्मा अलग शरीर अलग नहीं, दोनों को साथ में काम करना है। तो आपसी संबंध को अच्छी तरह से समझो और उस पर निश्चय रखो तो आपको शरीर के लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट रहेगा और आत्म सम्मान भी। आत्मा तो ये संबंध है, तो संबंध के बारे में बात करो कि मेरा ऐसा कैसा, किस बात का, कर्मों के लिए कितना संबंध है। एकांत में भी बैठना चाहिए ना, लेकिन सारा टाइम कर्म, शरीर थक नहीं जाएगा? और उस पर नेगेटिव थॉट्स, उस पे वेस्ट थॉट्स, उस पे कितना कुछ कचरा अंदर होता है, रात को नींद भी बराबर नहीं आती है फिर। तो इसलिए एकांत भी जरूरी है। एकांत में बैठ करके आपस के संबंध से थोड़ी देर के लिए न्यारा होकर, मैं एक चमकता सितारा हूं, शांत और शुद्ध, और फिर वापस आ जाओ। डिफिकल्ट है अपने पास आना, डिफिकल्ट है औरों के पास जाना, डिफिकल्ट है अपने पास आना। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्लीज, जो कहा ना कि नहीं, वो बहन ने कराया लास्ट में, बेलगाम वाली बहन ने, आई लव यू, आई लव। अरे पहले अपने आप को तो बोलो, प्रकृति को भी बोलने से पहले अपने आप को तो बोलो कि हाँ, मेरा जो अस्तित्व है सचमुच मुझे अपने अस्तित्व के लिए बहुत प्यार है, सच्चा प्यार, निस्वार्थ। सेम थिंग अभी क्या अप्लाई करेंगे आप? पहले आपने अप्लाई किया आत्मा से शरीर का संबंध, आत्मा से सभी औरों का संबंध कि वो भी आत्मा अपने शरीर में है और वो भी कर्म कर रही है, फिर संबंध वो अनुभव किया कि मैं आत्मा किस किस संबंध में सबके साथ हूं, सबका मेरे साथ क्या क्या संबंध हो रहा है, क्या क्या रोल बजा रहे हैं सभी, है ना, और मुझे कौन सा कर्म करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कितने समय में मुझे रिजल्ट महसूस होगा, ये सब टारगेट सेटिंग बाद में आता है। करना तो वही है पर कॉन्शियसनेस का फर्क है, स्मृति का फर्क है। इसीलिए भारत में एक है कि भाई रोज सुबह घर से निकलते पहले जहां भी आपका मंदिर है या उसको नमन करते हुए, प्रेयर करते हुए निकलते घर के बाहर। वो प्रेयर क्यों की आपने? अच्छी स्मृतियों के लिए कि कुछ भी आ जाए सारे दिन में, ये जो प्रेयर की मैंने उसकी मदद से मैं उसको बेहतर कर दूंगा। तो प्रेयर या मेडिटेशन, जब तक आपने ये मेडिटेशन नहीं किया मैं आत्मा हूं, तब तक वो कनेक्शन कैसे फील होगा? आप तो संतुष्ट हो गए कि मैंने सच्चे दिल से प्रेयर किया, पर आप आध्यात्मिक नहीं कहलाओगे क्योंकि आपने अपने से कोई कनेक्शन नहीं किया। आध्यात्मिक वो कहलाता है जो पहले अपने से कनेक्शन करता है। स्पिरिचुअलिटी माना स्पिरिट की एक्चुअलिटी को जानने वाला, वो तो होना ही चाहिए। और उसके लिए कहीं अब जंगल में जाना नहीं है, पहाड़ों पे जाना नहीं है। सेम वे जब आप मेडिटेशन करते हो, क्या ये कनेक्शन आप परमात्मा के साथ, बातचीत परमात्मा के साथ और संबंध परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं? क्योंकि असली राजयोग तब कहलाता है जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है। और क्या एक दो करेंगे या सब कर सकते हैं? जो समझते हैं सब कर सकते हैं ये हाथ खड़ा करें। क्यों क्यों सब कर सकते हैं? क्योंकि सब आत्मा है। जब सब आत्मा है तो सब परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। है कि नहीं? तो इसीलिए प्रवृत्ति भले हमारी कोई भी हो, एक यूनिकनेस, एक कॉमन फीचर ये है कि हम अरेक आत्मा, परम आत्मा के साथ जुड़ी हुई हूं। कैसे? जैसे शरीर सूरज के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है बताओ? और ये जहां सूरज नहीं आता है 6 महीने के लिए, वो लोग आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं, बोलो आर्टिफिशियल कि नहीं? शरीर को थोड़ा सा गर्माहट मिले, इतनी मेहनत करते हैं। और हमको भारत में तो वाह, सूरज ही सूरज है कि नहीं? और सूरज किसके लिए है बताओ? केवल इनके शरीर के लिए है या सबके लिए है? मांगना पड़ता है सूरज से? कौन कहता है समझता है? हाँ, मांगना पड़ता है, हाथ खड़ा करो। वो देने वाला है, वो दाता है, और वो हर एक को देता है। अगर आपने सूरज का ताप नहीं लिया तो देखना फिर क्या होता है। कितना कंपल्सरी है आजकल, कौन सी कमी हो गई है सबके अंदर? D3 सिंपल, पर्दे लगा के एसी चालू करके हम बैठ जाते घंटों तक, सूरज ही नहीं आता सामने। सूरज ने मना किया नहीं, हमें जाना पड़ता है उसके सामने, तब जाकर के वो उनका प्रसाद देता है जो शरीर को हेल्दी रखता है। सेम वे आत्मा को हेल्दी कौन रखेगा? आत्मा खाती है? आत्मा पानी पीती है? आत्मा किस लिए करती है सब? शरीर के लिए। आत्मा नहीं खाती है तो आत्मा को कहां से मिलेगा भाई? एड्रेस ढूंढो, आत्मा को कहां से मिलेगा? तो कई कहते हैं खुद ही हम करेंगे, शिवम शिवम शिवम, मैं ही कुछ शिव हूं, मैं ही कर सकता हूं। घोर तपस्या में चले जाते हैं। अरे भाई, सब थोड़ी जाएंगे, कर्मयोगी भी तो बहुत सारे हैं जगत में, तो वो क्या परमात्मा से मिलन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सबका हक है, मांगना नहीं है। आप लोग में से बताओ किसने एक बार भी नहीं बोला होगा कि भगवान एक बार तो मुझे अपना दर्शन करा लो, या एक बार तो आपका रास्ता दिखा दो? सबने बोला होगा ना एक बार तो। आत्मा बोलती है, आत्मा को स्मृति आती है कि जहां से मुझे सारा पावर मिल रहा है वहां तो मेरा कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, वाया 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 बहुत है, पोस्टमैन बहुत बनाए हैं, भाई मेरा मैसेज दे देना ना, मेरा ये कर देना ना, पर डायरेक्ट नहीं है। राजयोग माना आत्मा का, परम आत्मा के साथ वो जहां है जैसा है उनके साथ कनेक्शन करना। एक बार कनेक्शन और संबंध हो गया ना, फिर देखो आपको फील होगा कि मैं उनकी ही कंपनी में हूं, भले ना वो परम धाम में है, पर मैं आत्मा उनकी ही कंपनी, उनकी ही रोशनी, उनकी ही ओरा में हूं, क्योंकि मैं उनकी फैमिली की हो गई, संबंध में आ गई। सब है पर विस्मृति का खेल है। फिर स्मृति में आ जाओ, मैं कौन, मैं किसका? एक परमात्मा का। तो जब हम दोनों का परिचय अच्छी तरह से स्पष्ट समझ जाते हैं कि जैसी आत्मा वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा, है कंफ्यूजन इस बात में? जैसी मैं आत्मा वैसे मेरे परमपिता परमात्मा, अगर मैं ज्योति बिंदु स्वरूप सूक्ष्म आत्मा हूं तो परमात्मा कैसे होंगे? मेरी पहचान तो उन्हीं से होगी ना। हम कहते ना, हाँ अरे ये तो आपका बेटा है ना, बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, तो मेरी पहचान तो परमात्मा से ही है। तो इसीलिए परमात्मा का सच्चा परिचय, वो देवता नहीं है, वो परमात्मा है, वो देवता देव परिवार की रचना करते हैं, परमात्मा देव परिवार की रचना करते हैं, पर रचयिता कौन है? परमात्मा एक निराकार। तो वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको आदत ही नहीं है, हमको तो आदत ही है आंखों से देखने की, क्या करें? आंखों से नहीं दिखाई देगा तो नहीं होगा, सॉरी। पर आंखें तो कभी भी धोखा देती है। आपको आंखों पर 100% विश्वास है? बुद्धि, रियल आंख कौन सी आपकी? बुद्धि। बुद्धि में विवेक है। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, पूरी दुनिया खलास कर देंगे। और अगर बुद्धि को इंप्रूव करते जाएंगे तो अपना जीवन, परिवार का जीवन, पूरे विश्व को एक नया रूप दे सकेंगे। बुद्धि हमारी सच्ची आंख है। राजयोग किसे होता है? मन और बुद्धि द्वारा, इन आंखों से नहीं, इन कानों से नहीं, मन और बुद्धि द्वारा होता है। तो अब याद रखना कि इन इंद्रियों से भी इंपॉर्टेंट क्या है? मन और बुद्धि। किसकी है? मुजात्मा की है, मन और बुद्धि। वो बराबर गाइडेंस से न चली तो आज संस्कारों का पैकेज हमारा मिक्सअप हो गया। अच्छी बात सुनेंगे तो भी सो जाएंगे, अच्छी बात सुनेंगे तो भी अनसुना कर देंगे। पर अगर मन और बुद्धि अटेंटिव है तो फटाक से वो बात अपने अंदर आ जाती है, फिर कोई भी प्रकार की नॉलेज क्यों ना हो। मन बुद्धि पर बहुत डिपेंड करता है। तो राजयोग मेडिटेशन कहां से शुरू होता है और किस पर अटैक करता है? मन बुद्धि से शुरू होता है और मन बुद्धि पर अटैक करता है, जिससे संस्कारों में परिवर्तन आवे। सुनने से, बोलने से, देखने से नहीं आएगा, वो खाली हेल्प है। रियल काम कौन करता है? मन बुद्धि। और वो कौन सी चीज बनाता है जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है या भ्रष्ट बनता है? वो है संस्कार, है ना। तो इसीलिए राजयोग माना आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़, लिंक, टू वे कम्युनिकेशन। अगर मोबाइल बनाने वाले हमें, हमारे अंदर भी वो मैकेनिज्म होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर वो मैकेनिज्म ऑलरेडी है कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर अमेरिका तक कर सकते हैं तो परमधाम तक क्यों नहीं? अगर सैटेलाइट से टीवी चालू हो सकता है जो अवकाश में है, तो शिव बाबा के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो सकता? वो चैतन्य बैठे हैं, जैसे हम चैतन्य बैठे यहां, वो चैतन्य बैठे हैं, अभी भी हमारे साथ है ना, हम सबको देख रहे हैं, हम सब पर उनकी रोशनी है जिसमें सभी शक्तियां हैं, सभी मूल्य है। तो वो आत्मा परमात्मा के साथ लिंक, वार्तालाप और संबंध कौन से? जो कल करुणा भाई जी बोले, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो आपको 8 संबंध बताती हूं जो आप धीरे धीरे परमात्मा के साथ पक्का करना। पहला है माता पिता, कि अगर मेरे माता पिता यहां है शरीर के, उन्होंने आत्मा को जन्म नहीं दिया, शरीर को, शरीर के, तो मुझ आत्मा के भी माता पिता। सो फर्स्ट संबंध कौन सा बताया? बोलो। नहीं आता है ना इतना जल्दी, क्योंकि वो आदत पड़ गई है शरीर के ही माता पिता के साथ, आत्मा के माता पिता परमात्मा। सेकेंड संबंध, सत शिक्षक। आत्मा को सिखाने वाले कौन है? सत शिक्षक परमात्मा। तीसरा, हमारी गति सदगति करके हमको अपने साथ वापस शांति धाम ले जाने वाले कौन? परमात्मा। किसी और को एड्रेस पता ही नहीं है, इसीलिए वो सदगुरु। तीसरा, सतगुरु। चौथा, इतना लविंग है, इतना प्यारा है, इतना सबको संभाल के प्राप्तियों से भरपूर करने वाला दाता है कि वो ही हमारा सच्चा साजन है। आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन है, समझा? साजन किसको कहा जाता है? जिसके लिए लगता है यही मेरी दुनिया है, फिर बाद में पता चलता है बाप रे मैं कौन से नरक में आ गया। लेकिन वो सच्चा साजन है। हम आत्मा ही कौन है? सच्ची सजनिया, हाफ पार्टनर, बेटर हाफ। वो तो चाहता है बेटर हाफ रियल अर्थ में हो, बेटर हाफ, क्योंकि कोई भी चाहेगा, कहते ना बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर इज अ वुमन, बराबर ना? ऐसे ही हम सब के पीछे हमारा सक्सेस का कारण है परमात्मा। तो साजन का संबंध। फिर आता है डॉक्टर और सर्जन, मेक हिम योर डॉक्टर और सर्जन। आत्मा का इलाज कौन करेगा भाई? परमात्मा। तो आत्मा के डॉक्टर, आत्मा के सर्जन शिव बाबा है। हम बाबा क्यों बोलते हैं? बाबा पहले इंडियन फैमिलीज में पिताजी के लिए यूज होता था। गुजराती में क्या बोलते हैं? बापूजी। और कई लैंग्वेजेस में बाबा बोलते हैं। महाराष्ट्रियन फैमिलीज में बाबा बोलते हैं, बंगाली फैमिलीज में बाबा बोलते हैं, उर्दू और सिंधी फैमिलीज में बाबा बोलते हैं। सो उस समय जो शब्द था ना, वही अप्लाई कर दिया कि चलो आज से हम शिव परमात्मा ऐसे नहीं, शिव बाबा कहे, क्योंकि वो हमारे आत्मा के फादर। फिर पांचवा संबंध कौन सा? फ्रेंड। उसको बेस्ट फ्रेंड बनाए। आत्मा का बेस्ट फ्रेंड शिव बाबा है। कहीं भी जाओ अकेले नहीं, वो फ्रेंड हमेशा हाजिर है आपके लिए। कभी आप अकेले हो ही नहीं सकते। इतना एंजॉय कराते हैं ना, इतना एंजॉय कराते हैं हर जगह, जो वो मौज और आनंद के मजा और आनंद दीक्ष का अर्थ बताया था ना, एंजॉय कराते किधर भी, कितनी भी परिस्थिति आ जाए उसमें से भी कुछ दिलवा देते हैं। ट्रू मैजिशियन तो वही है ना, जादूगर। इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम शिव बाबा को साथ कनेक्टेड रहे, तभी कहलाते हैं हम राजयोगी। और सातवां संबंध है बच्चा। सुना? वही हमारा बच्चा है। उसका एग्जाम्पल कैसे दिया है शास्त्र में? कि कृष्ण ने यशोदा मैया के पास, तो यशोदा मैया कृष्ण की मां बनी। हम शिव बाबा के मां और बाप क्यों नहीं बन सकते? वो भी हमारा बच्चा है, उससे प्राप्ति होती है। संबंध क्यों बनाया जाता है? क्योंकि संबंध के बिना कभी प्राप्ति होती नहीं है। और संबंध को क्या किया जाता है? निभाया जाता है। वो तो A1 है निभाने में, सच्ची बताती हूं, A1। यू कैन नॉट कंपेयर हिम विथ एनीबडी। और हमें स्टार्ट करना होगा इस संबंध को निभाने से, हर संबंध का स्ट्रेस उतर जाता है और हर एक को अपने वाइब्रेशन का फायदा मिलता है। तो इसीलिए, और आखिरी संबंध है आशिक माशुक। प्यार के बिना जी सकते आप? हर एक से प्यार चाहिए, कोई मुझे प्यार करे। तो वो तो माशूक है, जन्म जन्मांतर से हम पता नहीं कितना हमने उसको पुकारा है, कितना दिल से चाहा है कि वो आए, वो हमारी गति सदगति करे, वो हमें दुखी से सुखी बनाए, कितना उसको बुलाया है। अभी मीराबाई का देखो एग्जाम्पल, नरसी मेहता का एग्जाम्पल देखो, ऐसे कितने सारे हैं जिन्होंने सबने यही उदाहरण दिया कि प्यार करना है ना तो उसी से करना है। क्योंकि प्यार सबसे नहीं हो सकता है, प्यार दुनिया वालों से प्यार कभी नहीं हो सकता है, लेकिन परमात्मा से सच्चा प्रीति, कहते हैं ना सच्चा प्यार परमात्मा से होता है। तो इसीलिए आठ संबंध आप याद रखना, आठ संबंध। इस आठों संबंध को आप अगर बनाएंगे ना परमात्मा के साथ और फिर निभाते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में विशाल परिवर्तन आ गया है। राजयोग के अभ्यास के लिए चार आधार बताए। एक तो जो आपको यहां तीन लेसन्स आत्मा परमात्मा राजयोग के मिल रहे हैं, उसकी सही पहचान होनी चाहिए। कोई ना कोई संबंध के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपसी प्रेम होना चाहिए आत्मा का और परमात्मा का। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कि मेरी खेती अच्छी हो जाए, मुझे पोस्ट अच्छा मिल जाए, मेरा जो जेलिस फील कर रहा है उसको कुछ ना मिले, मुझे ही मिले, ये सब बातों के लिए परमात्मा का प्रेम नहीं है। आपसी प्रेम माना एकदम निस्वार्थ, अनकंडीशनल, और फिर आपसी लेन देन द्वारा प्राप्तियों की अनुभूति। बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे हो, कभी आप भी मेरे लिए करोगे, कभी मैं भी आपके लिए करूंगा। आपसी लेन देन द्वारा प्राप्तियां, ये है चार आधार राजयोग के। संबंध का बताया। राजयोग के लिए कुछ मुख्य बातें हैं कि पहचान एक होनी चाहिए और सत्य होनी चाहिए। फिर आप अगर मुंझे हुए हैं, क्वेश्चंस है, तो आप राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चंस को क्लियर करो, फिर उसमें संशय या मूंझे हुए मत रहना। या तो क्लियर करो या तो ठीक है, आप अपना जो भी आप पसंद करते हो वो करो, लेकिन बीच में मूंझे हुए मत रहो। समान भाव से मिलना राजयोग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचा वाला भाव नहीं, ओ मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे निर्गुण हूं, मैं पापी हूं का, मतलब भजन में नॉर्मली ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मैं तो बहुत पापी हूं। यहां पर समान भाव से शिव बाबा को मिलना जरूरी है। अगर बाबा शांति के सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ऐसा भले नहीं हूं अभी, पॉसिबल है कि मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे स्मृति तो वही करनी है जिससे एक दिन मैं उनके समान शांत स्वरूप बन जाऊं। स्मृति नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। जब तक आपकी स्मृति होगी मैं नीच हूं, मैं नीच हूं, मैं नीच हूं, तो क्या हो जाएगा, नीच ही रहेंगे। इसीलिए समान भाव। परमात्मा से कुछ भी मांगना नहीं, क्यों, माता पिता है, बेस्ट फ्रेंड है, अपने आप को करते हैं, दाता है, अपने को मांगने की जरूरत है। वो आत्मा के शान के विरुद्ध है मांगना। और उनसे रोज मीठी मीठी बातें करो, रोज। अगर एक दिन भी गया ना आपने उनसे मीठी मीठी बातें नहीं की, तो आपको फर्क महसूस होगा कि आज का दिन इतना क्वालिटेटिव नहीं रहा। अगर आपको क्वालिटेटिव चाहिए तो फिर आपको रोज मीठी मीठी बातें करनी है। भगवान को कभी किसी बात का दोष नहीं देना। नहीं दोगे ना, क्यों नहीं देंगे, बहुत मीठा है, कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी को मारता नहीं। ये सब बातें बहुत भ्रमित करती है, वो जो सच्चा है ना उससे हमको दूर ले जाती है। कभी किसी प्रकार का दोष परमात्मा को कभी नहीं देना। उल्टा वो मदद करते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। तो बोलो, दो प्रकार के योग है राजयोग में। एक कहा जाता है कर्मयोग, मना चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आप वो कनेक्शन में रह सकते हो और कर्म भी कर सकते हो। तो कर्मों में कौशलता बोलते हैं ना गीता में, कर्म कौशल हो जाते हैं आप, तो वो भी आपको फील होगा और पर्सनालिटी भी आपकी बहुत अच्छी प्रभावशाली बनती जाएगी। तो आपका काम आधा आसानी से हो जाएगा, है ना, और आप कभी अकेले नहीं होंगे, तो वो साथ का प्रभाव सामने वाले को फील भी होता है। और दूसरा है बुद्धि योग, समय निकाल के प्लीज रोज बैठ के, प्रेफरेबली सुबह का टाइम, फ्रेश होके आप बैठो, भले स्नान नहीं भी कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग में, आप लोग तो करते ही होंगे, पर अगर नहीं करते हो तो भी बैठो मेडिटेशन में, लेकिन सुबह का टाइम मिस नहीं करना, क्योंकि है ना वो अपॉइंटमेंट है, शिव बाबा के द्वारा दी गई अपॉइंटमेंट है। रास की बात बताती हूं, और उस अपॉइंटमेंट में बैठेंगे ना तो बस वो तो बलिहार जाएगा। देता है तो कैसा देता है, छप्पर फाड़ के देता है। वो अमृत वेले की महिमा है। सुबह सुबह नुमा शाम भी अच्छा है, जब सनसेट होता है ना वो टाइम भी बहुत अच्छा है, तो उस समय भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर वो टाइम भी नहीं है तो कोई भी टाइम करो, फिर उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मेंटल स्टेट के लिए सुबह और शाम की बात है, बाकी परमात्मा की मेंटल स्टेट के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं। रात को तो एक पत्र जरूर लिखना, एक पत्र कोई भी संबंध से, छोटा सा, वो बड़े बड़े नहीं पढ़ते, छोटा सा, कि आपको उस संबंध के द्वारा कैसा अनुभव हुआ, सारे दिन में आपने कैसे उनके साथ क्या कार्य किया, उसके अनुभव क्या रहे, लिखो, है ना। अगर कोई मुश्किलात आई है भले लिख दो कि आज ये मुश्किलात आई है, कल हम दोनों मिलके इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ऑलवेज पॉजिटिव, कभी ना दोष देना ना कंप्लेन करना। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन ना शिव बाबा तक पहुंचेगा नहीं। ओके, बाकी तो आपको सब गाइडेंस मिलती रहेगी। जहां भी आपका सेंटर है, जहां आप जाओगे वहां आपको पूरा आपको गाइडेंस मिलेगी। अभी पूरा करना है तो देखिए, दिस इज पूरा रीचार्जिंग द सोल बैटरी। सोल बैटरी को रीचार्ज करने का ये पूरा मेथड है। मोबाइल रिचार्ज करते हो, हर चीज को रिचार्ज करनी पड़ती है। अभी तो गाड़ियों को भी रिचार्ज करने की बारी आ गई है, है? तो फिर सोल को रिचार्ज क्यों नहीं करने का? खाली फूल चढ़ा के हो जाएगा, आत्मा रिचार्ज हो जाएगी, नारियल चढ़ा के रिचार्ज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद तो वापस अपने को ही मिलेगा और हम ही खाएंगे, है ना। सोल रिचार्ज होती है मन बुद्धि के कनेक्शन से परमात्मा से, ठीक है। तो वो जैसा है ना, हमको वो अपने रंग में रंग देता है। अभी एक सेकंड के लिए चलिए आवाज से परे, जैसे आपको बताया, आप ये मुद्रा में भी बैठ सकते हैं क्योंकि ये ज्ञान मुद्रा है और कनेक्शन है। ये उंगली हमेशा दूसरों की तरफ पॉइंट करते हैं, इसमें ईगो का प्रभाव है और ये आत्मा की निशानी है। ये दोनों को ज्वाइन करो तो मेडिटेशन करते करते ईगो को भी आप हरा सकते हो। और आत्म अभिमानी, ये शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा। ब्रह्मा कुमारी इसमें आए तब पहली बार सुना कि वी हैव बिकम बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमानी और देह अहंकारी हो गए हैं हम। मना क्लॉथ एकदम टाइट हो गया है, अहंकारी, और अभी हमको बनना है आत्म अभिमानी, विच इज ओरिजिनल, जो हम थे वैसा बनना है। तो चले एक मिनट, केवल एक मिनट, कितना होता है, आंखें खुली रख के आंखों को सिखाओ, सामने देखते हुए भी नहीं देखना है, कानों को सिखाओ, आवाज सुनते हुए भी नहीं सुनना है, और जाओ तो आंखों के पीछे अपने उस स्थान पर जहां पर आप स्वयं बैठे हैं, प्रकाश स्वरूप। दिन रात वाला प्रकाश नहीं है ये, ये चैतन्य शक्ति है, ऊर्जा है, इस पांच तत्व से पार शक्तिशाली ऊर्जा, हम आत्मा। और अब मन बुद्धि द्वारा आकाश से परे एक ऐसी दुनिया जहां सुनहरा लाल प्रकाश तत्व है, जहां शिव बाबा हमें देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो भी चैतन्य परम शक्ति, और मैं आत्मा उनकी किरणों में आत्म शक्ति। महसूस करे वो कनेक्शन, वायरलेस, प्यार का सागर आपको निस्वार्थ प्यार से भर रहा है। अपने प्यार के रंग में रंग रहा है, ऐसा महसूस होगा जैसे मां ने बहुत प्यार से आपके सिर पर हाथ घुमाया, पिता ने आपके पीठ पर थपथपाया। हम सब मिलकर के उस शिव बाबा का दिल से आभार माने और सदा इस कनेक्शन को फील करते रहे। अब वापस उस परमधाम के क्षेत्र से आकाश की ओर आ जाएं और फिर से इस हॉल में अपने देह के अंदर ब्रुकुटी में स्थित हो जाए। फील करे अपने शरीर को और जो ऊर्जा अभी ली है शिव बाबा से, उस ऊर्जा को अपने नेत्र पर दीजिए ताकि इंद्रियों की भी शुद्धिकरण हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।